लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के विभिन्न समूहों और कलीसियाई अभियानों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे प्रतिदिन अपने सुसमाचार प्रचार मिशन की पुनर्खोज कर विश्व के जरूरतमंदों की सेवा के प्रति अपने करिश्मे को समर्पित रखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंखें बंद कर लेता और होंठ चबाता है, वह बुराई कर चुका है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय के 26 से लेकर 30 तक के पदों में निहित शब्द। इन शब्दों में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई है, तथा इस बात को भी कि मजदूरी मजदूर की है जो परिश्रम कर अपने घर परिवार के लिए रोटी रोजी कमाता है। श्रोताओ, जब लोगों को उनके काम के लाभ से पुरस्कृत किया जाता है, तो वे जानते हैं कि उनका काम उनके भूखे मुंह को भर सकता है। जब भूखे मुंह को भरने के लिए काम करना जरूरी नहीं होता है, तो स्वतः ही काम करना कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि भूख मनुष्य से काम कराती है। भूख परिश्रम के लिए एक प्रेरक है। यह प्रेरितों के सिद्धांत के अनुरूप भी है। यदि कोई काम नहीं करे तो उसे खाने का भी अधिकार नहीं है। श्रोताओ, एक मजदूर की भूख उससे काम कराती है। उसका मुंह उससे आग्रह करता है कि वह काम करे और अपने परिवार का भरण पोषण करे, जो यथार्थवाद का स्वागत है। हालांकि इस पतित दुनिया में काम करना थका देने वाला और निराश करने वाला होता है, फिर भी अपनी भूख को संतुष्ट करने की इच्छा मेहनती व्यक्ति को उत्पादक बनने के लिए प्रेरित करती है। उक्त पदों में निकम्मे, कपटी, उपद्रवी और कुयोजनाएं बनाने वाले व्यक्तियों को भी फटकार बताई गई है। अधर्म के कारण ये व्यक्ति बुराई को खोदते हैं और बुराई का पीछा करते हैं। बाइबल आचार्य क्लार्क कहते हैं कि दुष्ट बुरी युक्ति को पूरा करने के लिए उतना ही परिश्रम करता है जितना कि खदान वाला पत्थर खोदने में करता है। ऐसे व्यक्ति अन्यों की खामियों को खोदने और उन्हें बदनाम करने का भरसक प्रयास करते हैं। अधर्म उनसे वे काम करवाता है जिनकी कभी भला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उनकी बोली आग की तरह जलती है, तथा उनके विनाशकारी शब्दों में जीवन को नष्ट कर डालने की क्षमता होती है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक ऐसे ही व्यक्तियों से सावधान करता है। कपट के कारण वे झगड़ा पैदा करते और चुगली कर मित्रों में फूट डालते हैं। उपद्रव करने के लिए पड़ोसी को बहकाते हैं और उन्हें कुमार्ग पर ले जाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम सावधान रहें जो कुयोजनाएं बनाते और षड्यंत्र रचकर भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार ऐसे व्यक्ति अपने मन में पहले से ही बुराई कर चुके हैं। फिर 16वें अध्याय के अंतिम 3 पदों में लेखक कहता है, सिर के पके बाल सुंदर मुकुट हैं, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्म संयमी नगर विजेता से बढ़कर। निर्णय के लिए चिट्ठियां डाली जाती हैं, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। यहाँ धैर्यवान और आत्मसंयमी लोगों की प्रशंसा कर लेखक स्मरण दिलाता है कि मनुष्य चाहे जो भी करे, न्याय, निर्णय और परिणाम प्रभु ईश्वर के हाथ में है। श्रोताओ, सिर के पके बाल सुंदर मुकुट है से तात्पर्य यही कि वयोवृद्ध लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे धार्मिकता, धर्म के मार्ग और गंभीर भक्ति के मार्ग पर चलें। ईश्वर और मनुष्य दोनों उसी रीति से उनकी खोज करते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि जो बूढ़े हैं वे अच्छे होंगे, कि उनकी लंबी उम्र ने उन्हें सिखा दिया होगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के बाद क्या होगा, यह सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अपने अंत समय में वे शांति में जिएं और अन्यों के लिए अच्छे आचरण का उदाहरण बने। जागते रहने और सावधान रहने का परामर्श देकर संत पेत्रुस अपने दूसरे पत्र के 14वें पद में लिखते हैं, भाइयों, इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि प्रभु की दृष्टि में आप लोग निष्कलंक, निर्दोष और उनके अनुकूल हों। और संत मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 46वें पद में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ईमानदार और बुद्धिमान पाए। श्रोताओ, यदि वृद्ध लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो उनकी आयु उनके आदर और सम्मान का कारण बनेगी, क्योंकि बुढ़ापा सम्माननीय है और अन्यों के सम्मान का निर्देश देता है। लेवी ग्रंथ के 19वें अध्याय में दिए गए विविध आदेशों में यह भी लिखा है, तुम बूढ़ों के सामने खड़े हो जाओगे और उनका सम्मान करोगे। किंतु दुष्टता के मार्ग पर चलने वालों को दंडित किया जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी और उनका मुकुट अपवित्र और मिट्टी में मिलने के लायक हो जाएगा। ईसाया के ग्रंथ के 65वें अध्याय में नबी के श्रीमुख से प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, वहां न तो कोई ऐसा शिशु होगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे न कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। अस्तु श्रोताओ, यदि वयोवृद्ध लोग बूढ़े व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अखंडता को बनाए रखना चाहिए, तभी उनके सिर के पके बाल वास्तव में उनके लिए एक मुकुट सिद्ध होंगे, वे दुगने आदर के पात्र बनेंगे और कृपा उनकी वृद्धावस्था की शान होगी।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय में राजा सुलेमान एक सच्चे दोस्त और भाई की अहमियत बताते हैं। कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त सदैव प्यार करता है, वह विश्वासमंद होता है और भाई मुश्किल समय में मदद करता है। यानी कि एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे भाई का प्यार सच्चा प्यार होता है, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल ही क्यों न हो। सूक्ति ग्रंथ के अन्य अध्यायों में कही गई बातों पर पुनः ध्यान आकर्षित कराते हुए 17वें अध्याय में भी लेखक उन्हीं विषयों पर कटाक्ष करना जारी रखता है। कहता है कि लड़ाई झगड़ों के बीच होने वाली दावतों से अच्छी शांति के साथ सूखा भोजन है, और जो दास बुद्धिमानी से काम करता है वह अपने स्वामी के मूर्ख बच्चों पर शासन करने के लायक बनेगा। 17वें अध्याय के प्रथम दो पद इस प्रकार हैं, अनबन के घर में दावतों की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है, समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्रों पर शासन करेगा और उसे उसके भाइयों के साथ विरासत में हिस्सा मिलेगा। श्रोताओ, वस्तुतः सूक्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय के प्रथम दो पदों में यह याद दिलाया गया है कि भौतिक धन सफलता को मापने का एकमात्र तरीका नहीं है। जिस घर में संघर्ष चल रहा हो, जहां क्लेश हो और कलह हो, वहां दावत करने की अपेक्षा शांतिपूर्ण स्थिति में सूखी रोटी खाना ही बेहतर है। भले ही हमारे पास भौतिक संपत्ति के रूप में कम हो, फिर भी हम सुख शांति का आनंद ले सकते हैं। ये पद पारिवारिक प्रेम की सलाह देते हैं, जो कि मानव जीवन में मन की शांति के लिए बहुत ही अनुकूल है। सार यही कि जो लोग एकता, एकात्मता और शांति में जीवन यापन करते हैं, वे न केवल ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त रहते, बल्कि परस्पर प्रेम में भी जुड़े रहते हैं। भले ही उनके पास भौतिक चीजों की कमी होती है, वे मन की शांति और ईश्वर के आशीर्वाद का आनंद उठाते हुए अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, न ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने बाती जलाई तेरी सच्चाई पाई नहीं, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो
आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। इटली के एमिलिया रोमांगना प्रांत में बाढ़ की स्थिति ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मई महीने के प्रथम सप्ताह के शुरू में खराब मौसम के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति में कोई भी सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। एमिलिया प्रांत में भारी वर्षा के कारण करीबन 21 नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं 4000 से अधिक लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा है। मूसलाधार वर्षा के कारण नदियों के तट टूट गए हैं, जिसके कारण करीबन 50,000 लोगों को बिजली आपूर्ति के बिना जीवन निर्वाहन करने को बाध्य होना पड़ रहा है। रोमांगना प्रांत से मिली खबरों के मुताबिक बाढ़ के कारण हुए जान माल की क्षति और नुकसान का सही और पूर्ण विवरण देना अभी संभव नहीं है। रिमिनी धर्म प्रांत कारितास के निदेशक मारियो गैलासो ने वैटिकन रेडियो वैटिकन न्यूज को बतलाया, बाढ़ के कारण प्रांत की स्थिति बहुत जटिल है। फोलरी रवेना में कारितास के निदेशकों ने कुछ केंद्रों को चिन्हित करते हुए विस्थापित लोगों को कंबल और मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराने में मदद की है। उन्होंने कहा कि ऐसे विकट परिस्थिति में लोगों के बीच एकजुटता देखने को मिली है, जो अन्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि मंडलों के रूप में आ रहे हैं। हर कोई परिवारों का स्वागत करने और बाढ़ वाले क्षेत्र में लोगों को आवश्यकता की चीजें प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। गैलासो ने कहा, हम अपनी ओर से वे सारी चीजें करने को तैयार हैं जो हम कर सकते हैं,
जिससे लोग अकेला और परित्यक्त महसूस ना करें। हम अपनी ओर से लोगों की चिंताओं और भय को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में उनकी प्राथमिकता समुदायों के निकट रहना है। संत पापा फ्रांसिस ने इमिलिया रोमांगा बाढ़ पीड़ितों के नाम अपना तार संदेश प्रेषित करते हुए उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। संत पापा ने इमिलिया रोमांगा प्रांत में बाढ़ से पीड़ितों और 9 मृतकों को अपनी निकटता प्रदान करते हुए कहा कि मैं हाल ही में आई बाढ़ और उसकी तबाही से प्रभावित सबों की याद करता हूं। संत पापा ने अपने तार संदेश में विशेष रूप से बाढ़ में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना का आश्वासन देते हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस आपदा के कारण प्रभावितों, पीड़ितों और घायलों को ईश्वर अपनी सांत्वना से भर दें। संत पापा ने कहा, मैं उन सबों की याद करते हुए उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूं, जो कठिनाई की इन विकट परिस्थितियों में राहत लाने और सबों के दुखों को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने धर्म प्रांत समुदाय के पुरोहितों को प्रभावित लोगों के निकट रहने, उनके संग एकता और भ्रातृत्व के भाव प्रकट करने के लिए उनका धन्यवाद अदा किया। संत पापा फ्रांसिस ने गेल जिराउड और कार्लो पेट्रिनी की एक इतालवी पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखी, जिसका शीर्षक द टेस्ट टू चेंज द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इज द पाथ टू हैप्पीनेस है, जो बुधवार को किताबों की दुकान पर उपलब्ध हुई। अपनी प्रस्तावना के शुरू में संत पापा ने लिखा, अच्छाई जो सुंदर प्रतीत होती है अपने साथ वह कारण ले जाती है कि इसे क्यों किया जाना चाहिए। यह पहला विचार है जो कार्लो पेट्रिनी के इस सुंदर संवाद को पढ़ने के बाद मुझ में उत्पन्न हुई। अपनी प्रस्तावना के अंत में संत पापा ने लिखा, मैं विश्वास करता हूँ कि यह पुस्तक एक अनमोल उपहार है, क्योंकि यह हमें एक व्यक्ति, समुदाय और संस्थागत स्तर पर एक मार्ग और इसका पालन करने की ठोस संभावना दिखलाती है। पारिस्थितिक संक्रमण का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसमें हम सभी भाई बहनों के रूप में आम घर की देखरेख करें, इस बात पर दाव लगाएं कि हम कम चीजों का सेवन करके और अधिक व्यक्तिगत संबंधों को जीकर अपनी खुशी के द्वार में प्रवेश करेंगे। उधर अगस्त 2022 में एक जुटता यात्रा के बाद कलिसियाओं की विश्व परिषद के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह पुनः यूक्रेन की यात्रा पूरी करते हुए युद्धग्रस्त देश में शांति स्थापना के संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं का पता लगाया। यह यात्रा 10 से 13 मई को WCC केंद्रीय समिति के अनुरोध पर पूरी हुई, जिसका उद्देश्य रूसी धार्मिक नेताओं के साथ मिलन और संवादों के माध्यम से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच शांति और मेल मिलाप स्थापित किया जा सके। इस दौर में WCC के महासचिव माननीय पिल्ले के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने स्थानीय कलिसिया के नेताओं, यूक्रेन सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ गहन विचार विमर्श किए, जिनमें उन्होंने एकता की आवश्यकता और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। प्रतिनिधि मंडल ने यूक्रेन के धार्मिक समुदाय के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रतिद्वंदी कलिसियाओं के बीच चर्चाओं की मेजबानी करने के लिए WCC की तत्परता की पुष्टि की, जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक आवश्यक तत्व है जिसकी देश को सख्त जरूरत है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।